शहीदों ऐ शहीदों तुम हयात हो, ऐ शहीदों तुम वफा की कायनात हो।
हमने एक टैबलेट तैयार किया है शोधा के हवाले से। मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम अफराद से कि जिन्होंने टैबलो तैयार किया है कि वो तशरीफ लाएं और हाजिरीन के सामने शोधा के हवाले से टैबलो पेश करें।
ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। अभी जो आपके सामने खेल पेश किया जाएगा, इससे पहले गुजारिश, आप लोगों को पूरा पूरा हक है कि इस खेल से इख्तलाफ कर सकते हैं, इसमें मौजूद मनाजर से, डायलॉग से, सीन से। जो खेल पेश किया जा रहा है इसका दौरानिया तकरीबन 35 से 40 मिनट का है, तो आइए देखते हैं घुटन।
कराची पर बात क्या है, नाजिमाबाद में मजलिस पर फायरिंग की गई और चार भाइयों समेत पांच अफराद जान बहक हो गए।
A suicide bomber has killed at least 10 people at a Shiite procession in the Pakistani city of Rawalpindi. 25 people have been injured, including children.
शहर कायद का जहां टारगेट किलिंग का सिलसिला न थम सका, टारगेट किलर एक, वारदातें दो, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल पे दोनों वारदातें एक ही ग्रुप की कार्रवाई है।
Suicide bomber blew himself up, targeting a Shia Muslim procession on their key holiday of Ashura.
थकन से चूर हो गया हूँ, दरवाजा खोलने जल्दी। क्या यार भाई, हमेशा देर कर देते हैं यार।
अच्छा सॉरी, नमाज पढ़ा था यार,
थक गया हूँ वैसे भी।
कहाँ रह गए थे तुम आज, काफी देर कर दी आने में यार।
वहां गया था,
बैठो बैठो।
वीजा ऑफिस।
वीजा ऑफिस?
जी।
वीजा ऑफिस क्यों गए थे भाई तुम, इसको तुम्हारी हरकत ही नहीं खत्म होती। किस काम से गए थे वीजा ऑफिस?
मैंने जो है वो कनाडा के लिए वीजा सैलम अप्लाई किया है।
तुम्हारे समझ में नहीं आता ना, यहाँ तुम्हें तकलीफ क्या है, क्या मसला तुम्हारे साथ? यहाँ मैं हूँ, बाबा हैं, अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, इससे तुम्हें अच्छा पढ़ा भी रहे हैं यार। तुम एक दफ़ा अपने ख्वाब पूरे क्यों नहीं कर लेते यार?
यार क्या मसला है इसमें, समझ से बाहर है मुझे आपकी बातें। हालात देखिए मुल्क के, अभी टीवी ऑन करेंगे वहाँ पे कोई शहीद, वहाँ पे कोई मर रहा है, आप कह रहे हैं सब सही है इस मुल्क में।
तो यार इसमें क्या क्या खराबी क्या है यार? हम बात सुनो, हम शियाने हैदर करार के मानने वाले हैं, हमारे लहू में, हमारे रगों में हुसैन खून दौड़ रहा है। फ़कत ये बम धमाकों और मौत के डर के हम अपना वतन छोड़ के जाना, ये कम से कम हमारे शेवर नहीं है। तुम बात को समझते क्यों नहीं हो?
तो भाई मैं कब कह रहा हूँ डर के भाग रहे हैं, मैंने ऐसा कहा अभी तक नहीं कहा मैंने। मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे एक बात बताएं, अगर फिरके वारिस के नाम पर यहाँ पर सब कत्ल हो जाएं तो हमारे बौजदार के मकासद का क्या होगा, है ना? ये बात पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाए और इमाम हुसैन से बेहतर किसी ने मतलब समझाए नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुने, अभी हालात ख़राब है ना यहाँ के, एक काम करते हैं चलते हैं बाहर रह के आ जाते हैं, जब हालात ठीक हो जाएंगे वापस और मेरे दिमाग में प्लान है, खुशी होगी आपको जान के। लेकिन आपने मेरी बात ही ख़राब कर दी थी
यार। तुम छोड़ो मेरी बात सुनो,
पहले मेरा प्लान,
आप मेरी बात सुने, सबको छोड़ो, ये वक्त नहीं है इस बात पे, ये बहस करने का मौका नहीं है। अभी फटाफट जाओ, चेंज करो, नमाज पढ़ो, बाबा भी नमाज पढ़ने गए आते ही होंगे, फटाफट जल्दी करो, शाबाश।
सुन लिया करें बात को,
रुको मेरी बात सुनो।
अब क्या है फिर, कोई लेक्चर?
अरे नहीं यार, ये रिमोट तो दो मुझे टीवी का जरा।
अब वापस नहीं बुलाएगा, थोड़ी देर वॉशरूम जाने दे, मुझे थका हुआ हूं मैं।
हाँ हाँ आराम से जाओ।
हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चले, कराची के इलाके अजादार कॉलोनी की मस्जिद और इमाम बरगल हुसैनी में धमाका हुआ है, धमाके में 80 अफराद।
मुश्तबा
क्या हो गया
यार, कहाँ रहेगा, जल्दी आओ यहाँ पे जरा।
क्या हो गया, वॉशरूम में बैठे नहीं रहे कभी आप?
यार ये टीवी पे देखो क्या चल रहा है यार ये।
जी नाजरीन आपको बताते चलें, कराची के इलाके आजादार कॉलोनी की मस्जिद इमाम बारगाह अल हुसैनी में धमाका हुआ है। धमाके में 80 अफराद शहीद और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें, कराची के इलाके आजादार कॉलोनी की मस्जिद इमाम बारगाह अल हुसैनी में धमाका हुआ है। धमाके में 80 अफराद।
जी नाजरीन कुछ बोलोगे भी, हुआ क्या है?
आजादार कॉलोनी की मस्जिद इमाम बारगाह
भाई जहाँ पे बाबा नमाज पढ़ने जाते हैं उस मस्जिद में धमाका हो गया है।
क्या बात कर
रहे, मुझे बता रहे वो
क्या बात कर रहे तुम यार? अरे अरे मुस्तफा, अरे यार हौसला करो भाई, क्या हुआ तुम्हें? बच्चे थोड़ी हो तुम यार,
वहाँ पे कोई नहीं बच्चा होगा मुझे पता है।
तो चल के देख तो लें यार, इस तरह हिम्मत थोड़ी हारते हैं। चलो शाबाश। आराम से मुस्तफा, क्या हो गया तुम्हें यार, क्यों उस तरह परेशान बैठे हो?
मुस्तफा ये क्या हाल कर दिया तूने अपना, रो रो के खुद को हलकान कर दिया है, कब तक कैसे बैठे रहोगे तुम? मुझे दुख इस बात का नहीं है बाबा को शहीद किया है, दुख इस बात का बाबा ने किसी परिंदे को पत्थर नहीं मारा था, किसी जानवर को नहीं मारा था, इंसान को क्या मारेंगे वो? यार तुम्हें क्या लगता है बाबा मुझे याद नहीं आते? जब भी उनके बारे में सोचता हूँ दिल उखड़ने लगता है, जैसे कि दुनिया वीरान सी हो गई, अजीब सी हो गई। लेकिन यार तुम ये भी तो देखो ना, उस सहने में हम अकेले तो नहीं है ना, हमारे जैसे पता नहीं कितने बेटों ने अपने बाप को खोया, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया। तुम मेरी बात को समझो, देखो किसी माँ ने अपना लखते जिगर को खोया है, किसी ने अपना हम सफर खोया है, हमारे लिए तो ये फखर की बात है। हमारे बाबा को मौला अली की सुन्नत पर अमल करते हुए दूरान नमाज शहीद कर दिया गया। उठो शाबाश, मुझे पता है तुमने खाना भी नहीं खाया होगा, सब तैयार करके गया था मैं। मुश्तबा मेरे भाई, देखो तुम जब मायूस होते हो मुझसे रहा नहीं जाता यार, तुम मेरा वाहिद सहारा हो, मजबूत रखो अपने आप को, तुम इस तरह देखकर मुझसे रहा बिल्कुल नहीं जाता, अजीब सी तबीयत हो जाती है। उठो शाबाश, मैं खाना गर्म कर रहा हूँ, दोनों खाना खाते हैं। उठो शाबाश, इस तरह परेशान नहीं होते। उठो मुश्तबा, मुश्तबा उठो। कौन आ गया इस टाइम पे? अलैहिस्सलाम।
ये आपका लेटर आया था टीसीएस वाले लेके आए थे, आप घर के थी ही में, दो तीन बार आया लेकिन आपने कोई रिस्पांस ही नहीं दिया, पता नहीं कि कहाँ।
अच्छा, बहुत मजा था। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, असल में आज दुकान काफ़ी देर कर दी थी बंद करने में। अच्छा नहीं नहीं यार, आप ऐसे थोड़ी जाएंगे, खाना बिल्कुल तैयार है। परवेज भाई आप बैठे हैं, खाना बिल्कुल तैयार है।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
चलें शुक्रिया, सलामत रहें। محترم جناب، آپ کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ گھر خالی کرنا ہوگا، ایک ماں باپ بصورت دیگر حکومت سن یہ اختیار رکھتی ہے کہ آپ کو اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے۔ پروردگار ہماری مدد فرمائے امام زمانہ۔
کون آیا تھا گیٹ پہ؟
ہاں
ابھی بیل بجی تھی، کون آیا تھا گیٹ پہ؟
نہیں نہیں کوئی نہیں یار، بس وہ اپنے پرویز بھائی تھے یار، پڑوس میں نہیں ہے۔
کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ کوئی خاص بات ہے؟
نہ وہ بس ایسی پتہ نہیں، ان کے گھر پہ کوئی دعوت ہے تو وہاں بلانے کے لیے آئے تھے۔ چلو چلو کھانا تیار ہے، کھانا کھا لو۔
ہاں ہیلو، جو کرنا ہے کل کرنا ہے۔ ہاں ہاں ایک دو کو مار دیں گے ان کے، نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں کل کرنا ہے، جب تک ان کے ماریں گے نہیں ان کو احساس نہیں ہوگا۔ ہاں پورا پلان سیٹ ہوا ہوا ہے۔ ہاں ہاں میری بائک، میرے گھر آنا، میں سو رہا ہوں گا، میری بائک لے جانا۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے ان کے مدرسے میں کیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے۔ بالکل دیکھنا، خیال کرنا تم، لوگ ہمیشہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہو۔ ہاں دیکھ بھال کے، صحیح ہے؟ چلو رات ہو رہی ہے، فون رکھو۔
مصطفیٰ
بھائی آپ رات میں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟
میں تو پانی پینے آیا تھا، تم کیا کس سے باتیں کر رہے ہو تم؟ یہ
اپنے کل پیپر ہے نا، تو ایک ایسی وہ دوست سے بات کر رہا تھا۔
دوست سے کیا مطلب؟ یہ کون سا پیپر جس میں مارنے دھارنے کی بات کرتے ہیں، دھماکے کرنے کی بات؟
نہیں نہیں وہ تو کچھ ایسی خاص بات نہیں۔
میں نے ساری باتیں سنی ہے تمہاری، تم یہ تم کیا چاہ کیا رہے ہو تم؟ تمہارے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔
انہیں کو ماروں گا جنہوں نے میرے باپ کو مارا تھا۔
کیا تمہیں کیا پتا کہ ہمارے بابا کو کس نے مارا ہے؟
آپ بھی جانتے ہیں۔
میں نہیں جانتا ہوں، مجھے بتائے نا
بھائی۔ پتا ہے سب کو، سب جانتے ہیں کون ہے۔ اب یہ نہیں بولے گا آپ کو نہیں پتا۔
مجھے واقعی نہیں پتا، بتاؤ مجھے، بتاؤ تو پتا چلے۔
لشکر صاحب اور کون ہے؟
او خدا یار،
اب یہ نہیں بولے گا وہ اس میں ملوث نہیں ہے۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے۔
کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ بتا دیں پھر
یار۔ وہی لوگ ملوث ہیں، یہ کہنا تو بھی ٹھیک نہیں ہے نا یار۔ تم ادھر آؤ، میری بات سنو۔ اور میرے بھائی
مجھے نہیں سننی، آپ ہمیشہ منع کرتے ہیں۔
میرا بھائی تم میری بات سنو، اس طرح جذبات نہیں ہوتے، تم بیٹھو میں بتاتا ہوں تمہیں۔ آدھی رات کو یار تم بھی پتہ نہیں۔ دیکھو یہ جو تمہیں لگ رہا ہے نا، یہ اتنا معمولی، اتنا چھوٹا سا کھیل نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑی سازش ہے۔ یہ لشکر اصحاب اور اس جیسی دیگر تنظیمیں تو بس اعلی کار ہیں، اور ان میں موجود جو لوگ ہیں نا وہ محض کرائے کے قاتل ہیں، یہ نہیں تو کوئی اور ہوگا۔ یہ ملکی، غیر ملکی ایجنسیاں، یہ سیاسی تنظیمیں۔
وجہ بتا دیں۔
میں بتا رہا ہوں، سن تو لو، یہ بیوروکریسی، یہ سارے جو نا یہ سب یہی کرواتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کیوں۔
دیکھو فلسفیانہ بات آپ یہاں پہ لائیں گے بیچ میں، بتائیں۔ خیر
یار تم بچے تھوڑی ہو یار، اب تو تھوڑا سا پروفیشنل ہو جاؤ بھائی۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں اتنی یہیں تک محدود نہیں ہیں۔ یہ دیکھو، پہلے تو اپنے ملک میں قتل و غارت کراؤ، بم دھماکے کرواؤ، اس کے بعد دنیا کے سامنے رونا رو، یہ بتاؤ کہ دیکھو ہمارے ملک میں کتنی جو نا دہشت گردی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ان سے جو نا فنڈ جمع کرو۔ یا دوسری سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب تک امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریوں کو اب تک تو جو نا یہ ایران کا انقلاب اسلامی ہضم ہی نہیں ہوا. اب پاکستان میں شیعہ کمیونٹی خاص طور سے کہتے ہیں کہ ایک اور اسلامی انقلاب ایک اور اسلامی انقلاب. تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ ان چیزوں کو روک ان کے روک تھام کے لیے کس حد تک گزر جائیں گے؟
پھر اور کیا کریں, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں یار, یوں کر کے بیٹھیں گے, یوں کر کے بالکل منہ نیچے کر کے اور ہاتھ پہ ہاتھ یوں کر کے.
میرے بھائی تم اتنا جذباتی کیوں ہوتے ہو یار تم؟ میں نے مانا تمہارا خون اس وقت گرم ہے, ہول رہا ہے, دیکھو اتنی تکلیف مجھے بھی جتنی تمہیں. تم بات کو سمجھ نہیں رہو, اب تو تم پر جو ہے نا اور بھی زیادہ ذمہ داری ہے, تم سمجھ رہے ہو کیوں؟ دیکھو ملک قوم ملت کا سرمایہ ہو تم, اب تو تمہیں چاہیے اور جی جان لگا کے محنت کرو, پڑھائی کرو. بابا بھی تو یہ چاہتے ہیں نا کہ تم ایک اچھے ڈاکٹر بن جاؤ اور اپنے خواب پورے کرو. یار یہ فالتو کی بحثوں میں دماغ میں کیوں لگاتے ہو؟
چاہتا ہوں میں بھی یہی ہوں کہ میں بھی پڑھوں گا جس طرح اور بچے پڑھتے, لیکن کیسے کیا کروں, میرے اختیار میں کچھ نہیں. سنیں میری بات کو, آپ کی بات سے سنتا ہوں میں, میری بات سنیں. میرے اختیار میں نہیں ہے کچھ. اب دیکھیں کہاں سے لاؤں گا یونیورسٹی کی فیس, ایک مہینہ بعد گھر خالی کرنے کہاں جائیں گے؟
یہ تمہیں کس نے کہا؟
میرے بھائی آپ کے کمرے میں لفافہ دیکھا تھا, بتاتے ہی نہیں آپ تو.
یار چھوڑو اسے تو
رکھا ہوئے ابھی تک
یار, ایسے لفافے تو آتے رہتے ہیں. تم بھائی تم اپنے پڑھائی پر توجہ دو, سارے تمام در توانائی وہاں پہ صرف کرو تم, نہ کہ ان چیزوں پر. تمہیں
پڑھائی مدد تو نہیں آئے گا ہماری, ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا.
مجھے معلوم ہے ہمیں خود کرنا پڑے گا.
میں جا رہا ہوں, مجھے نیند آ رہی ہے.
ایک منٹ تم بات مکمل, میری پوری بات سنو. تمہیں ٹینشن کسی بھی چیز کی نہیں ہونی چاہیے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ رہی بات تمہارے فیس کی, تو میرے پاس یار شہید فاؤنڈیشن والوں کا فون آیا تھا, تو وہ تمہاری فیس سبمٹ کر دیں گے. اور ویسے بھی یار نظام تو چل رہا ہے نا, دکان بھی تو چل رہی ہے. یار تمہیں مسئلہ کیا ہے, کس چیز کی تکلیف ہے تمہیں؟ تم بھائی دیکھو اپنی پڑھائی پر توجہ دو, سمجھ رہے ہو تم؟
مجھے نیند آ رہی ہے,
سو جاؤ. مگر ایک بات سنو کان کھول کے, نیکسٹ ٹائم تمہارے منہ سے اس طرح کے الفاظ میں نہ سنو, سمجھ آ رہی بات؟ یہ تم پر زیب نہیں دیتی اس طرح کی باتیں.
ٹھیک ہے,
کل آتے ہوئے پوری بات تو سنو, کل آتے ہوئے ہاسپٹل سے والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر آنا ہے لازمی, سمجھ گئے؟
وہ کون سا ہاسپٹل تھا ان کا, بابا کا جنا ہاسپٹل تھا شاید.
ہاں وہیں پر ہوتے اس طرح کے کیسز یار,
ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہاں سے
جنا ہاسپٹل جانا, وہاں سے چیزیں لے کر
آنا. نیند آ رہی ہے, خدا حافظ.
ہاں سو جاؤ, میں بھی سونے کی تیاری کر رہا تھا یار, فضول باتیں کرتے رہتے وہاں پہ.
ارے تم تو اپنی چھوڑو, تم تو کچھ سنا ہی نہیں رہے ہو. خام کا سسرا یہاں بٹھایا ہوا میں, اور
بندے یا اللہ کس کو فون کروں,
کیسے آنا ہوگا؟
السلام علیکم جواد بھائی,
یہ تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی لائن ہے.
کیسے ہو جواد بھائی, آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی 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 جواد بھائی, اصل میں بیٹے کو خون چاہیے تھی.
یہ انتہا کا فارغ آدمی ہے.
جی جی
کافی ٹائم سے یہاں فائلیں دیکھ رہا ہے.
اچھا نہیں ہو سکتا,
کر کچھ نہیں رہا.
چلے جواد بھائی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے.
کرتے کیا ہو آپ؟
ٹھیک ہے جواد بھائی, ٹھیک ٹھیک ہے جواد بھائی.
یار میں تو اپنا کام پچھلے ایک ہفتے سے یہاں بہت اچھے انداز میں کر رہا ہوں. جی چاچو
بات سن لے.
جی
وہ بلڈ بینک کہاں پہ؟ یہاں پہ
چاچو بلڈ بینک. آپ ایک کام کریں, یہاں سے آپ بالکل سیدھا جائیں.
جی جی
سیدھا جانے کے بعد آپ لیفٹ ہینڈ میں مڑیں گے, پھر آپ رائٹ ہینڈ پہ مڑیں, سامنے سرجیکل وارڈ ہے, اسی کے نیچے ہی لیبورٹری ہے بلڈ بینک ہے.
بیٹا میں کنفیوز ہو گیا, آپ دکھا سکتے ہو مجھے؟
چاچا آپ نے لگتا ہے صبح ناشتہ نہیں کیا, اس وجہ سے کنفیوز ہونے. چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں.
چلے جزاک اللہ بیٹا.
چاچا آپ یہاں سے لیفٹ پہ جائیں.
جی جی
پھر رائٹ پہ جائیں. ठीक है, फिर लेफ्ट पे जाए, सामने सर्जिकल वार्ड है, उसके नीचे ही जो है ना ब्लड बैंक है, ठीक है?
ठीक
भाई, यहाँ पे तो ऑफिस है, यहाँ जाएंगे?
अच्छा माजरत माजरत माजरत, अच्छा यहाँ से जाएं आप, यहाँ से लेफ्ट हैंड पे जाएं, फिर राइट हैंड पे जाएं, ठीक है? फिर लेफ्ट हैंड पे जाएं, सामने सर्जिकल वार्ड है, उसके नीचे ही जो है ना ब्लड बैंक है।
जजाकल्ला बेटा, जजाकल्ला।
अच्छा जजाकल्ला नहीं बोले, आटे पे मेरे लिए पान ले आइए, आपकी वजह से मैंने पान टूक लिया अपना।
मैं खुद परेशान हूँ इससे पान की पड़ी हुई।
एक तो पान ठुकवा दिया ऊपर से, जजाकल्ला कह रहे हैं।
किसको?
आप आ जाइएगा।
मेरा नाम कब आएगा? पिछले एक हफ्ते से
आपका आएगा। नाम नहीं आएगा, आपका नाम आ जाएगा, सबर कर लो, अपनी बारी का वेट कर लो। जब नाम आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। आ जाओ मेरे साथ।
अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई जी, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? जी जी
जिना, हॉस्पिटल पत्नी सरकारी हॉस्पिटल है क्या?
मदद चाहिए थी जी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं,
आपका क्या मसला है बताएं तो सही।
नहीं नहीं नहीं,
आप तो ऐसे जोड़ रहे हैं जैसे मैं भगवान हूं। अरे बता दे,
तो यहां ब्लड बैंक में मालूम
क्या? एक तो घर पे मम्मा के ठाने, ऊपर से यहां पे आप जैसे लोग मिल जाते हैं
तो देंगे, इसके अलावा नहीं।
सुबह नाश्ता करके नहीं आए क्या आप?
अच्छा ओ नेगेटिव चाहिए थी
यार। ये चाचा जो है ना अभी मुझसे ब्लड बैंक का रास्ता पूछ के गए थे।
अच्छा
लगता है चाचा ने कुछ ज्यादा खाना हजम कर रहे हैं, मार्शल फिरकी लिए चाचा ने, जा नहीं रहे ब्लड बैंक। जरा पूछिएगा आप पढ़े लिखे।
चले अतीक भाई, खैर हो? चले चले कोई बात नहीं,
पूछ नहीं, आप पढ़े लिखे लगते हैं, आप पूछ लें शायद आपकी बात समझ में आ जाए। चाचा हेलो, चाचा चाचा खाना जम नहीं हुआ है क्या? इस तरीके से चक्कर लगा रहे
लोग बैठे हुए यार, मैं खुद परेशान हूँ, आपको अपनी
यहाँ परेशानी में आते हैं सब, खुशी से तो कोई भी नहीं आता।
अंकल बात सुनिएगा।
जी बेटा, जी जी।
काफी टाइम से आपको वहाँ बैठे देख रहा हूँ मैं, आप कभी इधर जा रहे कभी इधर, कभी आप इनसे ब्लड बैंक का रास्ता, कोई परेशानी है क्या?
नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं।
तो अगर है तो मुझे बता दे, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ।
चाचा का खाना हजम नहीं हो रहा है, चाचा खाना हजम कर रहे हैं
लोग, पता नहीं कहाँ से आ गए फारिक लोग। बेटा असल में बेटा बीमार है, उसे खून चाहिए थी।
तो चाचा खुद दे दो ना खून, आपका तो बेटा है।
जो आपके बेटे वो यहीं एडमिट हुए हैं?
जी जी यहीं।
अच्छा तो वैसे इनकी बात सही है, क्योंकि आपके आप उनके बेटे फादर हैं उनके, तो आप उनको खुद क्यों नहीं दे रहे ब्लड?
बेटा असल में मैं दे सकता था, मसला नहीं था, लेकिन मेरा बी पॉजिटिव, उसे वो नेगेटिव की जरूरत है।
तो चाचा चेंज करवा लेना आप।
आप क्या कहें लोगों को।
अच्छा मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, अपने सर्किल में मालूम करता हूँ, अगर किसी के पास ओ नेगेटिव था आपने?
जी जी
ठीक है, अगर ओ नेगेटिव होता है तो मैं जो है वो आपसे रब्ता करता हूँ। ठीक है
चाचा, जजाकल्ला नहीं बोलना, हो गया तो मिठाई का डब्बा ले आइएगा।
कहाँ से आ गए ये फारूक?
हेलो
चाचा, कोरंगी से आए।
हाँ हादी, कहाँ हो?
यार
मैं बाद में बताऊंगा मैं कहाँ पे हूँ, तुम ये बताओ कि अभी यहाँ जिन हॉस्पिटल आ सकते हो?
एक तो पता नहीं मैं कब से बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं दे रहे, चाचा को खून के लिए जतन कर रहे हैं।
उनके बेटे को ना वो नेगेटिव ब्लड चाहिए। हाँ तुम्हारा वो नेगेटिव था ना क्या 2 महीने पहले? यार हमारे सर्किल में कोई है जैन वगैरह में? अरे हाँ सही कह रहे हो, ठीक है सही है, मैं जो है वो आपसे रात में मिलता हूँ फिर इंशाल्लाह, अभी ज़रा मसरूफ़ हूँ। ठीक है हाँ। अरे अंकल
मेरी बात मान लो लड़के, चाचा शक्ल से अच्छे नहीं लगते हैं।
अंकल छोड़ें मेरी बात सुने, अभी मेरे दोस्त ने बताया, मुझे अभी भी याद आया बिल्कुल एक लम्हे पहले, कि मेरा खुद ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है।
झूठ बोल रहे,
मुझे बता दे कहाँ चल रहा है, मैं ले लूँगा ब्लड आपको।
बेटा आप एक बार सोच ले, आप
चाचा कोई जायदाद थोड़ी दे रहे हैं जो सोचना पड़ेगा।
बेटा कहीं आपको कोई मसला
नहीं, बता दें चले
चाचा, इनको कोई मसला नहीं होगा।
चले बेटा
मुझे बता रही हैं इधर।
जी जी
ठीक है, साथ चलते हैं, कोई मसला नहीं।
सैयद मुश्ताबा हसनी, सैयद मुश्ताबा हसनी।
ओ भाई मेरा नाम कब आएगा? पिछले एक हफ्ते से यहाँ बैठा हुआ हूँ यार।
भाई आपका नाम मुश्ताबा हसनी है?
मेरा नाम वजाद है, कब आएगा मेरा नाम?
आपका नाम नहीं आएगा, आप जरा तमीज से तो बात करें।
आप पे चादरें चढ़ती हैं?
हाँ चादरें चढ़ती है, ये तुम्हारे अब्बा का अस्पताल नहीं है
ना, आपका भी अब्बा का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है।
मैंने जिसका नाम लिया है सिर्फ उसको ही पुकारा है।
तो मेरा नाम लेना, पिछले एक हफ्ते से यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं।
जब आपका नाम आ जाएगा तब मैं आपको बुलाऊंगा।
कब आएगा?
आ जाएगा।
दो टके के चपरासी,
दिखाओ मुझे वो फाइल, दिखाए। चलो आपका नंबर नहीं आएगा, निकलो यहाँ से।
क्यों नहीं आएगा मेरा नाम?
नंबर नहीं आएगा, निकलो यहाँ से, निकलो
भाई। मेरा नाम आना चाहिए,
निकलो यहाँ से, निकलो। सैयद मुश्ताक हसनी,
क्या अपनी चीज भूल गया हूँ मैं?
अजीब इंसान है, एक बार निकाल दिया तो निकल जाओ यहाँ से।
थोड़ी हूँ मैं,
निकल जाओ यहाँ से।
आप मुश्ताक हसनी को बुला रहे थे?
हाँ मुश्ताक हसनी
जी, मैं हूँ।
अजीब इंसान हो, कब से आवाजें लगा रहा हूँ, आवाज ही नहीं दे रहे हो।
ब्लड देने के बाद बस मैं आ गया, मुझे रूम नंबर।
जो करना है बाहर कर ले, बाहर बाद में देखेंगे, निकल जाओ।
मुझे रूम नंबर बता दो,
कहाँ से आते हैं?
ब्लड देने गया था भाई को।
आपको मैंने कब से आवाज़ें लगाई?
मैं माजरत चाहता हूँ आपसे।
माजरत की बात नहीं है, हम आपके नौकर नहीं है कि बार बार आवाज लगाएं।
मुझे बता दें कहाँ चलना है।
आ जाए 106 नंबर रूम में, जल्दी करें।
बेटा बात सुन ले।
जी बोले अंकल, आ रहा हूँ।
आप अहले तशी हो?
जी बिल्कुल अहले तशी हूँ मैं, आ रहा हूँ आ रहा हूँ मैं। जरा वो बुला रहे डॉक्टर साहब।
बात सुनना यार, आप मुझे माफ करना, पता नहीं मैं आप लोगों के बारे में क्या क्या बोल रहे, आपने मुझसे पूछा भी नहीं।
भाई जल्दी करो, ये रिश्तेदारियां बाद में निभाना, जल्दी आ जाओ।
जज़ाकअल्लाह बेटा, जज़ाकअल्लाह। लब्बैक या ज़ैना, लब्बैक या ज़ैना, लब्बैक या ज़ैना, या बिन्त मुल्तज़ा, हुरमत मीज़ा के लब पर है ये सदा।
कहाँ रह गए?
आ रहा हूँ आ रहा
हूँ। कभी तो टाइम पे खोल लिया करें दरवाजा।
अरे भाई एक मिनट यार, आओ आओ
यार। भाई एक काम करें ना, रिकॉर्ड बना लें आप, हमेशा दरवाजा लेट खोलते हैं।
अच्छा भाई सॉरी
यार। बात सुने, ये देखें
क्या दीवाने हो गए, क्या कैसी हरकतें कर रहे हो तुम?
आज आपका भाई बहुत खुश है।
अच्छा
जी,
कितने खुश हो भाई, बताओ क्यों खुश हो यार?
वीजा आ गया कनाडा का, आपका भाई जा रहे हैं अब कनाडा डायरेक्ट। अच्छा। खुश हूँ मैं बहुत आज। आप खुश नहीं लग रहे?
नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ।
पक्की बात है?
हाँ बिल्कुल यार,
देख ले।
हाँ हाँ मैं खुश हूँ।
देखिए मेरी बात सुने।
हाँ बोलो।
जब मामा नहीं थी ना, तो आपने और बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी मामा का एहसास हुआ ही नहीं। बाबा चले गए लेकिन अगर आपने तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रह पाता। लेकिन अगर आप इस खुशी के मौके पे इस तरह कहेंगे तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा कनाडा, यहीं रुकूंगा पाकिस्तान में, जो ख्वाब देखे रहे नहीं देखूंगा।
अरे नहीं भाई, मेरा भाई
पक्की बात है।
जैसे वैसी हाँ बिल्कुल यार।
खाने में क्या बनाया ये बताएं।
हाँ अच्छा, बल्कि मैं काम करता हूँ। खाने में
क्या बनाया?
बनाया तो यार पालक का सालन था
भाई। पालक सुन तो लो, पालक
मैं मीठा बना लेता हूँ ना कुछ।
गुलाब जामुन
डन,
भूख लग रही थी वैसे भी,
डन हो गया।
बस मैं आ रहा हूँ, हाथ धोगे
फटाफट आ जाओ।
ठीक है।
इस बेवकूफ को कौन समझाए।
और भाई
हाँ बोलो,
जब वहां पहुंच जाऊंगा ना
हाँ
बुला लूंगा आपको भी। दोनों भाई रहेंगे सुकून से।
उसकी नौबत ही नहीं आएगी। कौन है? हेलो, तुमने फिर फोन कर लिया यार, मसला क्या है तुम्हारे साथ क्या? अच्छा गुड गुड जॉब। नहीं नहीं एक नहीं, एक काम करना है, एतराफ में मेरा दुकान के ना, तुम्हें काम करना 8-10 बारूद बम एकदम फिक्स कर देना, जब मैं दुकान खोलूं ताला एकदम बम फट जाए। भाई हम डरने वालों में से नहीं है, हम अहले बैत के मानने वालों में से हैं यार। तुमसे जो बन पड़ता है ना तुम करो। नहीं करूंगा दुकान खाली, नहीं करूंगा, ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है, मैं दुकान खाली नहीं करूंगा। तुमने जो करना तुम कर लो यार, फोन बंद करो, दोबारा फोन मत करना जाहिल कहीं के।
वेलकम टू द शो, मैं हूं जमील गाजी, हाजिर हुए हैं फिर एक नए शो और एक नए मेहमान के साथ। आज हम हुकूमत की मैशियत, सियासत ना ही पॉलिसीज, हम किसी पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कामयाब शख्स पर। कामयाब शख्स कौन होता है? यकीनन कामयाब शख्स वो होता है जो अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव के साथ अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत रखता हो, जो मुश्किल वक्त से घबराता ना हो, जो हर चैलेंज का डट के मुकाबला करता हो। पाकिस्तान की तारीख ऐसे बहुत से हीरो से भरी पड़ी है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे हीरो से करवाएंगे कि जिन्होंने मसीहाई के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिन्होंने मसीहाई के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दुनिया के बेहतरीन न्यूरो सर्जन डॉक्टर सैयद मुश्तबा असनी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल है मेरा कि कनाडा की बेहतरीन सरजमीन को छोड़कर आपने पाकिस्तान आने का फैसला किया, वो भी इन हालात में कि जैसे कि आपको वहाँ खबर मिलती रहती होगी एक ख़ास मकतब फिक्र के अफराद को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आपने ऐश व्यास की ज़िंदगी छोड़ के पाकिस्तान आना फैसला किया, ऐसा क्यों? क्या भाई की मौत एक सबब है पाकिस्तान आना है?
सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जमील साहब कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। देखें, बर्र सगीर के हालात इससे ज़्यादा ख़तरनाक थे जब कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड से पाकिस्तान आए, यहाँ इंडिया है माजरत। और इसी तरह एक बड़े मशहूर साइंसदान है ईरान के, डॉक्टर मुस्तफ़ा चिमरान, वो अपनी नासा की जॉब को छोड़ के ईरान आए। और जहाँ तक एक बात रही ख़ास मकतब फ़िक्र की, तो वो मकतब फ़िक्र हम अहले तशही हैं। क्यों? अगर देखा जाए तो शनाख्ती कार्ड देख के हमको शहीद करते हैं, बसों से उतार के हमको मारा जाता है, मजालिस में हमारी बम धमाके होते हैं, मसाजिद, इमाम बारगाह, ये सब हमारे जो है इनमें धमाके किए जाते हैं और इनमें शहीद किया जाता है लोगों को। और अगर ये शहादत का सिलसिला इनसे नहीं रुकता तो ये क्या करते हैं? जो आजकल हो रहा है आप देखें, जबरी तौर पर गुमशुदा कर देते हैं। इसकी एक वजह है, वो वजह क्या है? इश्क मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखें, मुझे याद है कि वो वक्त के जब मैं अपने भाई से ना लड़ाई करता था कि भाई मुझसे ना, मैं भाई से पूछता आखिर हमें क्यों मारा जा रहा है। मैं तो बाहर छोटा था उस वक्त, मुझे समझ भी नहीं आता था। मैं भाई से हर वक्त पूछता भाई हमें क्यों मारा जा रहा है, यानी यहाँ हम शहीद हो रहे हैं, वहाँ हम शहीद हो रहे हैं। तो भाई कहता था कि भाई एक शेर कहता था कि यहाँ दस्तों पा कटेंगे, यहाँ जान पर बनेगी, ये मोहब्बत ली है कोई दिल लगी नहीं। मुझे नहीं समझ आता था क्या कह रहे हैं, मैं वही कहता था, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझता था उनकी बात। लेकिन उनकी शहादत के बाद मुझे इसका फ़लसफ़ा समझ आया शेर का। जब भी उनकी शहादत पर मैं रोया नहीं, ना मैं अब रोऊंगा। तो बहरहाल हमारा जुर्म यही है, हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हमको शहीद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मोहम्मद वाले मोहब्बत के घराने से नस्बत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं
जी। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इन तमाम बातों में ऐसी कौन सी बातें होगी, एक बात की जो आपको छुपती हो, क्या बात है जो छुपती हो?
बिल्कुल ऐसा है, देखें सबसे ज़्यादा बात छुपती है ना वो ये है कि जब पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मसले के तौर पे अहले तशही थे, और जब वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े से पाकिस्तान को निकाल के यहाँ लेके पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, तो उस वक़्त उनके पास पैसे मौजूद नहीं थे। तो जो उनको पैसे जिस शख्स ने दिए वो थे राजा साहब महमूदाबाद, वो भी मसले के तौर पे शिया थे। तो जिस मुल्क के दरो दीवार में हमारे आबाओ अजदाद का खून बसता हो, उसी मुल्क में रहते हुए हमको मारा जा रहा है, हमारे खून की कोई कीमत ही नहीं है, दीवारों से लगाया जा रहा है, सबसे चीज़ आ रही है चुपती। और एक बड़ा मशहूर शायर ने शेर कहा है कि गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, और कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ चुपती है यहाँ पे,
ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। दिल तो नहीं चाह रहा कि गुफ्तगू यहाँ रोकें, लेकिन कुछ प्रोग्राम की भी फॉर्मेटी होती है। हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं मत, देखते रहिए खबर से आगे। चाइना दोबारा खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, सवाल तो बहुत सारी लिस्ट है सवालों की, लेकिन हमारे पास जो है कम ही टाइम होता है, तो इन टाइम में हमने अपने तमाम सवाल समेटने होते हैं। चलते चलते आपसे एक सवाल करते चलूँ कि आप क्या फ़र्क देखते हैं पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में और गैर मुल्की मेडिकल यूनिवर्सिटी में, आप क्या फ़र्क देखते हैं?
फ़र्क तो बहुत वाज़े है, मैं काफ़ी साल कैनेडा में रह के आया हूँ। देखें यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, अब वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री, यानी पैसे कमाने का ज़रिया। एक बच्चा जब यकीन जाने कि अगर आप मालूम करें एक सेमेस्टर एक ईयर की फ़ीस जो होती है सेमेस्टर फ़ीस वगैरह, तो तकरीबन 50 लाख रुपये दे के एक बच्चा डॉक्टर बनता है। यानी अगर एक बच्चा 50 लाख रुपये दे के डॉक्टर बनेगा तो फिर जो मसीहाई का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो बहुत फ़र्क है यहाँ पे, सिर्फ पैसा कमाने की दुकान है ये।
तो आप क्या सलाह करेंगे, आप पब्लिक को जरा बताएं क्या सलाह क्या करेंगे इस हवाले से?
देखें अगर अपनी पुरानी बात को कनेक्ट करूँ यहाँ पे मसीहाई की, तो कोई नई सलाह करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें हमारे अंदर आनी चाहिए वो है इंसानियत। जब इंसानियत हमारे अंदर मौजूद होगी तब हम इंसान बनेंगे, और जब हम इंसान बनेंगे तो अगर मैं क्लिनिक में बैठा हूँ सामने से एक बंदा मेरे पास चलता आ रहा है, तो मैं मरीज़ उसको मरीज नहीं समझूंगा, ना कोई ग्राहक, मैं कहूँ खुदा की तरफ से एक बंदा मेरे पास चलता आ रहा है। अब जब खुदा की तरफ से मेरे पास बंदा चलता आ रहा है, तो उसके पास पैसे हो ना हो, किस रंग का हो किस नस्ल का हो, इससे मेरा ताल्लुक ही नहीं है।
तो डॉक्टर साहब व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, आप मुस्तकबिल में इस वतन के लिए क्या करना चाहते हैं आप?
देखें आपने मुझसे पहले सवाल कहा था कि भाई की शहादत यहाँ वजह, देखें सिर्फ एक वजह भाई की शहादत नहीं थी, जो एक और वजह है वो ये, देखें बात सुने, मैंने सर्वे किया बाकायदा इस पर रिसर्च की कि किस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा लैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो सबसे मुझे एक वजह समझ आई वो ये थी कि एक यहाँ के सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया, हमारे तालीमी निज़ाम को हाईजैक कर लिया सरमाएदारों ने। तो जो मेरा फ्यूचर प्लान है वो आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम को तब्दील करूँगा मैं इस अहद इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि सिस्टम को ही तब्दील करूँ, क्योंकि सिस्टम देखें तमाम दुनिया के मुमालिक में अगर हम देखें तो तमाम सिस्टम जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम पे बेस करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। तो जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे तो हम किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सिस्टम को जो है वो बेहतर करूँ।
ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन वक्त अपने मुकर्रर वक्त पे पहुँच गया, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल है कि ऐसा क्या आप डॉक्टर हजरात अपने पेट में लिखते हैं कि सिर्फ आपको और मेडिकल स्टोर वाले को समझ में आता है? क्या आप ऐसा तो नहीं लिखते कि हमने लूट लिया अब आपकी बारी आप लूट लें?
अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें अगर मैं आपको इसका एक वजह बताऊं तो सबसे पहली वजह तो आप ये कह सकते हैं कि असल में हमारे फाइनल ईयर में ना हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता था और बहुत ज़्यादा लिखना होता था, तो राइटिंग पे बहरहाल तवज्जो नहीं दे पाते थे। लेकिन इसकी असल वजह आपको बताऊँ, देखें दुनिया के किसी कोने में भी ना अगर आपको दवा की ज़रूरत है तो आपको एक डॉक्टर को बीच में कंसल्ट करना पड़ता है। अगर डॉक्टर आपको इजाज़त नहीं देगा तो आप दवा नहीं खा सकते। लेकिन हमारे मुल्क जो मुल्क बहरहाल है नहीं, किसी भी आप जाएंगे वहाँ पे मेडिकल सेंटर पे वो आप दवा कहेंगे कि मुझे दवा चाहिए, दवा दे देगा। तो क्योंकि डॉक्टर और जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वही राइटिंग समझ पाएँ और जो पेशेंट होते हैं वो खुद दवा का नाम ना समझ पाए, तो इसलिए राइटिंग इस तरह की जानबूझ कर करनी भी पड़ती है ताकि वो बीच में खुद से दवा ना ले ले और खुदा ना खास्ता कोई इसका बुरा असर ना हो।
तो डॉक्टर साहब आपका
आपकी माजरत बार कर दी आपकी, इंशाल्लाह जो है मैं आपकी जो है वो बात को समझूंगा और इंशाल्लाह अपनी राइटिंग पे तवज्जो दूंगा।
बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहता। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद थे दुनिया के बेहतरीन न्यूरो सर्जन डॉक्टर सैयद मुश्ताक असनी, साथ अपने प्लान आगाह कर रहे थे और साथ साथ अपने दर्द दिल भी बयान कर रहे थे। हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक नए शो और एक नए मेहमान के साथ, देखते रहिए खबर से आगे, अल्लाह निगेवान।
जी नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक खबर देते चलें, कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया पेश आया है। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान के मारूफ सर्जन डॉक्टर मुश्तबा हसनी को उनके क्लिनिक में घुसकर हलाक कर दिया गया है। आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर मुश्तबा हसनी जो कि एक अरसे से कैनेडा में मुकीम थे, कुछ ही अरसे कबल वो पाकिस्तान आए थे। जी नाज़रीन हम आपको बताते चलें कराची में टारगेट किलिंग का एक और इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान के मारूफ सर्जन डॉक्टर मुश्तबा हसनी को उनके क्लिनिक में घुसकर जहां बहक कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर मुश्तबा हसनी जो कि एक अरसे से कनाडा में मुकीम थे।